नमस्ते, मैं आरव हूँ। 99tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द वेब बीनीथ द वेब्स। पत्रकार सामंत सुब्रमण्यन की संक्षिप्त लेकिन व्यापक नैरेटिव नॉन फिक्शन पुस्तक है। इसका विषय वह भौतिक ढांचा है जिसे लोग अक्सर इंटरनेट के अदृश्य वायरलेस रूप के पीछे भूल जाते हैं, समुद्र तल पर बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलें। पुस्तक बताती है कि महाद्वीपों के बीच डेटा, दूरसंचार और वित्तीय संचार का विशाल हिस्सा इन्हीं केबलों से गुजरता है। सुब्रमण्यन तकनीकी प्रणाली का केवल परिचय नहीं देते बल्कि केबल बिछाने, उनकी मरम्मत, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले टूटने, कॉरपोरेट स्वामित्व और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को एक साथ रखते हैं। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद संपर्क टूटने जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि डिजिटल निर्भरता कितनी भौतिक और असमान है। पुस्तक का उद्देश्य इंटरनेट को क्लाउड की अमूर्त छवि से निकालकर इतिहास, भूगोल, श्रम, जोखिम और सत्ता से बनी अवसंरचना के रूप में समझाना है। यह तकनीक वैश्विक राजनीति और सार्वजनिक व्यवस्था के संगम पर लिखा गया विश्लेषण है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इंटरनेट की अदृश्य छवि के पीछे समुद्र तल की भौतिक व्यवस्था। पुस्तक का आरंभिक और सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इंटरनेट को वायरलेस या भारहीन मानना भ्रामक है। दूर देशों के बीच सूचना पहुंचाने का मुख्य माध्यम समुद्र के नीचे फैली फाइबर ऑप्टिक केबलें हैं, जिनमें बाल से भी पतले कांच के रेशों से प्रकाश संकेत गुजरते हैं। बाहर से सुरक्षा की कई परतें होने पर भी गहरे समुद्र में केबल अपेक्षाकृत पतली होती है, जबकि तटों के पास उसे जहाजों के लंगर, मछली पकड़ने की गतिविधियों और अन्य खतरों से अधिक बचाव चाहिए होता है। यह विरोधाभास पुस्तक की केंद्रीय अंतर्दृष्टि है। दुनिया की अत्यंत जटिल डिजिटल अर्थव्यवस्था एक साधारण दिखने वाली और सीमित भौतिक रेखाओं पर निर्भर है। सुब्रमण्यन के लिए यह केवल इंजीनियरिंग का तथ्य नहीं है। जब लोग इंटरनेट को क्लाउड कहते हैं तब वे उसके मालिकों, मार्गों, मरम्मत कर्मियों और विफलताओं को नजर से उछल कर देते हैं। केबलों की भौतिकता पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि कनेक्टिविटी समान रूप से वितरित नहीं है। बड़े नेटवर्क केंद्रों के पास वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन छोटे द्वीप या दूरस्थ क्षेत्र कभी कभी एक ही संपर्क रेखा पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार पुस्तक डिजिटल सुविधा के पीछे मौजूद भौगोलिक निर्भरता को समझने का आधार देती है। दूसरा, केबल बिछाने और मरम्मत में समुद्री भूगोल की निर्णायक भूमिका। सुब्रमण्यन यह स्पष्ट करते हैं कि समुद्र तल पर केबल डालना दो बिंदुओं के बीच सीधी रेखा खींचने जैसा कार्य नहीं है। मार्ग तय करते समय समुद्री ढलान, ज्वालामुखीय क्षेत्र, भूकंपीय जोखिम, गहराई, तटीय गतिविधियां और उतरने के स्थानों की व्यावहारिकता को साथ देखना पड़ता है। इसलिए केबल नेटवर्क भौगोलिक समझौते का परिणाम है, जिसमें सबसे छोटा मार्ग हमेशा सबसे सुरक्षित या सबसे सस्ता मार्ग नहीं होता। पुस्तक में प्रशांत क्षेत्र और टोंगा का उदाहरण इस समस्या को ठोस बनाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से केबल टूटने पर केवल इंटरनेट उपयोग बाधित नहीं हुआ, संचार और मरम्मत का समन्वय भी कठिन हो गया। दूरस्थ द्वीपीय समाजों के लिए मरम्मत जहाजों की दूरी, उपकरणों की उपलब्धता और मौसम का इंतजार संकट को लंबा कर सकता है। पुस्तक केबल उद्योग के उस श्रम को भी सामने लाती है जो सामान्यतः अदृश्य रहता है। सर्वेक्षण करने वाले विशेषज्ञ, जहाज चालक दल और टूटे हिस्से खोजकर जोड़ने वाले कर्मी। इससे पाठक समझता है कि विश्वसनीयता अपने आप नहीं बनती। वह निरंतर रखरखाव, समुद्री विशेषज्ञता और महंगे समयबद्ध संचालन से पैदा होती है। प्रकृति यहाँ पृष्ठभूमि नहीं, नेटवर्क की संरचना और उसकी कमजोरियों को आकार देने वाली सक्रिय शक्ति है। तीसरा, एकल संपर्क रेखा और आपदा से डिजिटल अलगाव का जोखिम। पुस्तक की सबसे व्यावहारिक चिंताओं में एक नेटवर्क प्रत्यास्थता की असमानता है। जिन देशों या क्षेत्रों के पास अनेक केबल मार्ग और वैकल्पिक कनेक्शन होते हैं, वे किसी एक कटाव को प्रायः संभाल सकते हैं। इसके उलट छोटे द्वीपों और दूरस्थ समुदायों के लिए एक केबल का टूटना व्यापक डिजिटल अलगाव बन सकता है। टोंगा का प्रसंग इसी अंतर को रेखांकित करता है। एक प्राकृतिक आपदा ने यह दिखाया कि ऑनलाइन सेवाएं, बाहरी दुनिया से संपर्क और संकट प्रबंधन सभी एक सीमित भौतिक जोड़ पर टिके हो सकते हैं। पुस्तक का तर्क यह नहीं कि हर कटाव वैश्विक इंटरनेट को बंद कर देगा, बल्कि यह है कि जोखिम स्थान और नेटवर्क विन्यास के अनुसार बहुत अलग होता है। यही कारण है कि केवल कुल केबल लंबाई या कुल डेटा क्षमता पर्याप्त मापदंड नहीं है। किसी समाज की वास्तविक सुरक्षा के लिए मार्गों की विविधता, मरम्मत तक पहुंच, तटीय लैंडिंग केंद्रों की सुरक्षा और आपातकालीन संचार विकल्प भी मायने रखते हैं। यह दृष्टि नीति निर्माताओं को डिजिटल पहुंच को केवल उपभोक्ता सेवा के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक आपदा को सनसनी की तरह नहीं, उस क्षण की तरह देखती है जब सामान्य दिनों में अदृश्य बनी निर्भरताएं अचानक स्पष्ट हो जाती है। चौथा, बड़ी टेक कंपनियों का स्वामित्व और संचार शक्ति का केंद्रीकरण। सुब्रमण्यम के विश्लेषण में केबल नेटवर्क का स्वामित्व एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है। इस क्षेत्र का विकास कभी राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनियों के समूहों और साझा कंसोर्टियमों से अधिक जुड़ा था। अब गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपने अंतर महाद्वीपीय केबल मार्गों को वित्त पोषित या संचालित करने लगी हैं। इससे तेज क्षमता, विशाल डेटा प्रवाह और उनकी वैश्विक सेवाओं के लिए अधिक नियंत्रण मिल सकता है, पर साथ ही डिजिटल अवसंरचना पर निजी शक्ति का केंद्रीकरण भी बढ़ता है। पुस्तक इस बदलाव को सरल रूप से अच्छा या बुरा नहीं ठहराती। इसके बजाय वह पूछती है कि जब कुछ कंपनियां नेटवर्क की महत्वपूर्ण परतों पर असर रखती हों, तब बाकी उपयोगकर्ताओं, देशों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता कैसे बदलती है। केबल का स्वामित्व डेटा की हर सामग्री पर स्वचालित अधिकार का अर्थ नहीं है। फिर भी मार्गों, निवेश प्राथमिकताओं और संपर्क के विस्तार से जुड़ी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय का महत्व इसलिए भी है कि इंटरनेट सेवाओं की प्रतिस्पर्धा और समुद्री अवसंरचना की प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से अलग नहीं रह गई है। पाठक को समझ आता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की पहुंच केवल सॉफ्टवेयर, ऐप या डेटा सेंटर से नहीं बनती, बल्कि महंगे और दीर्घकालिक समुद्री निवेश से भी बनती है, या कॉरपोरेट ढांचे और सार्वजनिक हित के बीच जवाबदेही के प्रश्न उठाता है। अंत में ग्रे जोन संघर्ष में केबलों का सुरक्षा और भू राजनीति से संबंध। पुस्तक समुद्र तली केबलों को केवल वाणिज्यिक सुविधा नहीं मानती, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की वस्तु के रूप में रखती है, क्योंकि ये मार्ग वित्तीय लेन देन, सरकारी संचार, व्यापार और सामान्य ऑनलाइन संपर्क को सहारा देते हैं। इसलिए उनका नुकसान प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाने का माध्यम बन सकता है। सुब्रमण्यन जासूसी, संदिग्ध तोड़फोड़ और ग्रे जोन युद्ध की चर्चा करते हैं। ऐसे उपाय जो खुले सैन्य संघर्ष की सीमा के नीचे रहते हैं और जिनमें जिम्मेदारी सिद्ध करना कठिन हो सकता है। फिर भी पुस्तक खतरे को केवल जानबूझकर की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई तक सीमित नहीं करती। लंगर, मछली पकड़ने वाले उपकरण और दुर्घटनाएं भी अक्सर वास्तविक जोखिम है। यही मिश्रित जोखिम सुरक्षा नीति को कठिन बनाता है, क्योंकि हर कटाव को हमला मानना गलत होगा, लेकिन हर घटना को सामान्य दुर्घटना मानना भी असावधान होगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के संदर्भ में पुस्तक दिखाती है कि केबल नीति, निगरानी की क्षमता और मार्गों का नियंत्रण व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ते हैं। इसका मुख्य सबक यह है कि अवसंरचना की सुरक्षा केवल नौसेना या तकनीकी कंपनियों का विषय नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्पष्ट जिम्मेदारियां, त्वरित मरम्मत क्षमता और सार्वजनिक समझ सभी की भूमिका है। निष्कर्ष में, द वेब बेनीथ द वेव्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो इंटरनेट, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या सार्वजनिक अवसंरचना को सतही परिचय से आगे समझना चाहते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ ना होने पर भी इसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पुस्तक का बल कठिन इंजीनियरिंग विवरणों पर नहीं, बल्कि उन विवरणों के मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक अर्थ पर है। पत्रकारिता, नीति, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार और भू राजनीति के विद्यार्थियों के लिए यह एक उपयोगी आरंभिक ढांचा दे सकती है। सामान्य पाठक को इससे डिजिटल जीवन की सुविधा के पीछे चलने वाले रखरखाव, जोखिम और निर्भरता का अधिक ठोस बोध मिलेगा। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह नेटवर्क सुरक्षा को केवल पासवर्ड, सॉफ्टवेयर या उपग्रहों के प्रश्न तक सीमित नहीं रहने देती। यह पाठक को मार्गों की विविधता, मरम्मत क्षमता, स्वामित्व और दूरस्थ समुदायों की असमान कमजोरियों जैसे प्रश्नों पर ध्यान देने योग्य बनाती है। समान विषय की पुस्तकों से इसका अंतर इसकी संक्षिप्तता और रिपोर्टिंग आधारित दृष्टि में है। यह केवल केबल तकनीक का इतिहास नहीं, ना केवल युद्ध और जासूसी की कथा है। यह समुद्री भूगोल, श्रम, प्राकृतिक आपदा, कॉरपोरेट निवेश और राज्य शक्ति को एक ही अवसंरचनात्मक प्रणाली के परस्पर जुड़े आयामों के रूप में रखती है। इसकी सीमा यह है कि गहन कानूनी और शासन संबंधी समाधान चाहने वाले पाठकों को अतिरिक्त सामग्री देखनी पड़ सकती है। फिर भी छिपी हुई डिजिटल व्यवस्था को स्पष्ट और तात्कालिक बनाने में यह पुस्तक विशिष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं समंत सुब्रमण्यन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिल्म इज दे हैं।